اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آج انفارچونیٹلی ہم دوبارہ اسی حالت میں پہنچ گئے جس میں شعبان اور رمضان میں تھے, اور میری تو بہت شدید خواہش تھی کہ باقاعدہ ایک وہی پراپر آڈینس ہوتی تو مطلب اس میں بات کرنے میں بہت ایک آسانی سے بھی ہوتی ہے. بہرحال تو ہم جیسا کہ اب کوئی نیا ٹاپک تو نہیں شروع کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہمارے ہاپرز والے دروس تھے تزکیہ نفس والے, اس پر بات کی تھی, اور آج کے ویک کیونکہ وہاں فاکنر والے لیکچر کی باری تھی تو میں اسی ٹاپک کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں. اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو کنکلوڈ کیا تھا, جیسے میں نے عرض کیا تھا پرپز آف کریشن والے پورے چیپٹر کو, لیکن اس میں ایک دو لوز اینڈز ٹائی اپ کرنے رہ گئے تھے. تو آج کی حد تک انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو بات کر لیں, اور اس میں ایک دو باتیں اور بھی بڑی اہم ہیں کہ جو براہ راست ٹاپک سے تو نہیں تعلق رکھتی, لیکن انشاءاللہ یہ کہ جیسے جیسے آج کی گفتگو تھوڑی آگے بڑھے گی تو میں اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گا, ان کی امپورٹنس ہماری زندگی اور ہمارے اس جو لیکچر یا درس والا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی. تو ہم پچھلی دفعہ جو بات کر رہے تھے کہ جس میں ہم نے اس بات کو کنکلوڈ کیا تھا کہ جو قرآن کریم نے اولو الالباب اور اوتو العلم کے حوالے سے جو آیتیں ہم کو ملتی ہیں اور موجود ہیں قرآن کریم میں, وہ آیتیں ہمیں اس بات کی طرف ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں خدا نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو مین پوائنٹ تھا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سورس آف کنفیوژن رہے گا, اگرچہ کہ میں اس بات کو بار بار ریپیٹ بھی کر رہا ہوں, کہ جب بھی ہم اہل علم کی یا اوت العلم کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کبھی بھی وہ لوگ نہیں ہوتے جو دنیا میں کسی مدرسے میں یا یونیورسٹی میں یا دانشگاہ میں یا کتابیں پڑھ کے یا درس و تدریس کے ذریعے سے عالم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ مراد کبھی بھی نہیں ہے. یعنی قرآن کریم نے اوت العلم سے ان لوگوں کو مراد لیا ہے, اور نہ حقیقتاً وہ علم انسان کی خلقت کا مقصد ہے اس علم کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا چیز ہے, اس کو میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا تھا پچھلی دفعہ, اور یعنی ویسے تو ہم نے بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ شروع میں جو آیت تھی مین وہ سورہ طلاق کی آخری آیت تھی, سورہ مومن کی آیت تھی, کہ جس میں خدا بالکل واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کے سلسلے کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ تم عالم ہو جاؤ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وقد احاط بکل شیء علما. دو باتیں, یعنی کہ ہر شے پر احاطہ خدا کو کہ عالم ہو جاؤ, اور عالم ہونے کی تعریف کیا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ کوسچن آنسرز بھی اسی لیے وہ کیے تھے کہ عالم ہونے کا مطلب جان لینا نہیں ہے, عالم ہونے کا مطلب سمجھ لینا نہیں ہے, عالم ہونے کا مطلب کسی چیز کو دلائل سے ثابت کر دینے کے قابل ہو جانا نہیں ہے, بلکہ عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ایک چیز کی حقیقت آپ کے قلب پر کھل جائے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم اپنے رشتوں کے کیا ہیں, عارف بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, کس طریقے سے, پڑھ لکھ کے تھوڑی ہیں. یعنی اگر مجھے یہ بات کسی سے کہیں, چار لڑکوں کو یا چار بچوں کو آپ کے سامنے یا بچیوں کو آپ کے سامنے کھڑا کریں اور ان میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا بچہ کون سا ہے, تو اس بات کو جاننے اور سمجھنے میں آپ کے لیے کوئی دشواری ہے کہ آپ کا بچہ کون سا ہے؟ اگر 100 میں بھی کھڑا کر دیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنی اولاد کیا ہے اس کی حقیقت کے عالم ہیں. उसके आरिफ हैं, उसकी पूरी मारिफत रखते हैं, यानी उसके हवाले से आपको कोई भी धोखे में मुबतला नहीं किया जा सकता, उसके जरिए उसके राह से आपको गुमराह नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको आलिम होना कहते हैं। और ये जो आलिम होना है, यानी कि ये एक हकीकत है कि जो आपके कल्ब और दिमाग पर रोशन है, और ये किस तरीके से आप इस हकीकत तक पहुंचे, बराह रास्त उस ताल्लुक के जरिए से उस हकीकत तक पहुंचे, यानी जो रिलेशनशिप आपका डायरेक्टली उस इंसान से है बनाम औलाद या माँ या बाप, वो रिलेशनशिप उसने आपको ये आलिम बनाया है, इस बात पे गौर कीजिएगा। तो इसी वजह से इल्म की सबसे आला शक्ल जो है वो किस रास्ते से होती है, ताल्लुक से हासिल होती है, ठीक है। यहां से इस मिसाल से भी आपको शायद बात थोड़ी और वाजे हो कि किताबें पढ़ पढ़ कर या बहस मुबाहसे कर कर के जो इल्म हासिल होता है वो दर हकीकत इल्म की सबसे निचली शक्ल है, सबसे लोएस्ट लेवल है, और उसमें शक शुबे गुमराही भटकने के इम्कानात बहुत रहते हैं। तो उस इल्म की ना हकीकतन फजीलत है, और ना खुदा ने उस इल्म के हासिल करने वाले लोगों के बारे में कहा है कि मैंने इंसान को इस मकसद के लिए पैदा किया, कि जब खुदा कह रहा है कि तुम इल्म हासिल कर लो कि अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, तो ये इल्म का मतलब ये नहीं है कि तुम सबको देख देख के और उसके बाद बैठ के किताबें लिख लिख के या पढ़ पढ़ के ये इल्म हासिल कर लो, बल्कि क्या मतलब है कि तुम्हारे वजूद पर ये हकीकत खुल जाए कि अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, और तुम्हारा पूरा वजूद इस बात से रोशन हो जाए कि खुदा के इल्म ने हर चीज का अहाता कर लिया। ये मतलब है तालमों का। और ये जो पहलू है, ये जो दर्जा है, ये हकीकत खुदा की तरफ से अता होता है, ठीक है। इन्हें हम लोग अगर अपनी जिंदगी की तरफ आए, मासूमीन के उस डोमेन को हटा दें, क्योंकि जाहिर है कि मासूमीन तो हमारे ऊपर वो चीज़ें तो नहीं अप्लाई होती हैं डायरेक्ट, तो हम लोग अपना सफ़र शुरू वहीं से करते हैं, इल्म कस्बी से शुरू करते हैं, लेकिन हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम उस इल्म तक, उस मकाम तक पहुँचें कि खुदा हमें इल्म अता करे। लेकिन खुदा जब इल्म अता करता है तो वो किताबों से नहीं अता होता, वो इल्म, वो इंशाल्लाह वो थोड़ा सा मैं आज जो है ना इन्हीं सारी बातों को ज़रा सम अप कर देना चाहता हूँ, ताकि ये गुफ्तगू एक अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुँच जाए। और इसमें एक बात की मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अगर जिन हजरात को भी या जिन सुनने वालों को भी इस टॉपिक में दिलचस्पी पैदा हुई है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो वर्थ लिसनिंग और वर्थ पॉन्डरिंग है, तो उनसे मेरी एक बिल्कुल मुअद्दबाना दरख्वास्त और गुजारिश ये है कि फिर इसको सरसरी ना लें, क्योंकि ये शायद मैंने जितने अरसे से भी मैं 8-9 साल से यहाँ बात कर रहा हूँ, इतनी डेप्थ में जाके और इतना अपने पूरे कैनवस को इतना ज़्यादा फैला के पहली दफ़ा गुफ्तगू की है, इतनी ज़्यादा मैंने गहराई में या इतनी ज़्यादा चीज़ों को वसत देकर उसको बात नहीं की थी पहले कभी, इस उम्मीद पर कि शायद अब हम इस लायक हो चुके हैं इंशाल्लाह कि अब हम सिर्फ सतह पे ना रहें बल्कि गवासी भी करें, कुछ डेप्थ में भी जाएं, कुछ गहराइयों में उतर के भी मोती और हीरे जवाहरात निकाल सकें। तो एक मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस टॉपिक को सरसरी ना लीजिएगा, ठीक है। इन्हें सरसरी ना लीजिएगा मतलब है कि खाली एक बात सुन, एक दर्स सुन लिया, एक लेक्चर सुन लिया, उसके बाद छोड़ दिया, इसको पूरा सीरियल सुने, नोट्स बनाएं। मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ जब तक जिंदा हूँ सवालात के जवाबात देने के लिए, भले सवालात करें, क्वेश्चंस रेस करें, लेकिन उसको पूरे तरतीब से कि पर्पस ऑफ क्रिएशन के आखिरी 2 लेक्चर्स मिला के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 15 लेक्चर हो जाएंगे जो मेरी गिनती अगर सही है तो, और फिर उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं वो तमाम दुरूस जो हमने, यानी मजालिस प्लस लेक्चर्स जो हिदायत और विलायत के हवाले से हमने बात की थी, वो इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं कि आप अगर अपने मकसद खिलकत तक पहुंचना चाहते हैं, आप अगर उतुल इल्म के दर्जे को पाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हिदायत याफ्ता हों, और हिदायत याफ्ता होने के लिए लाजमी और वाजिब है कि आप रिश्ते विलायत से वाबस्ता हों। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम गुफ्तगू मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक नतीजा देती है इंशाअल्लाह। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि इसमें अगर इस मौजू पर दिलचस्पी फील हो रही है तो फिर उसको पूरी तरतीब से लेके चलें और बिल्कुल एक प्रॉपर वे में सुने। अच्छा, हम बात आज यहां से शुरू कर रहे हैं कि इंसान, इंसानों में इन्हें, और इंसान से हमारी मुराद जो है वो कौन है? मुसलमान है। ठीक है, यहाँ अभी हम आम इंसानों की बात नहीं कर रहे कि वो लोग जो जाहिरन मुसलमान हैं वो एक दर्जे के हामिल नहीं है, यानी कि जिस इंसान पर भी कि फॉर एग्जांपल अभी अगर दुनिया में 1.5 अरब इंसान ऐसे हैं कि जिन पर मुस्लिम का वर्ड अप्लाई हो सकता है, तो उनमें दर्जात हैं, और इसी तरीके से उन दर्जात के मुताबिक ही कलाम खुदा और दीन खुदा उनको एड्रेस करता है और समझ में आता है। ठीक है, यानी कि इस लिहाज से ये बात अहम क्यों है? इसलिए कि जब आप अपने मकसद खिलकत को समझने के बाद विलायत से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो विलायत से कनेक्ट होने वाले लोगों का दर्जा एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं इसलिए आपके वहां से पढ़ के सुना रहा हूं कि जो, यानी कि इस विलायत के उनवान से जो दकीक तरीन और गहरी तरीन मजमून है अल्लामा तबातबाई का रिसालतुल विलाया, यानी ये वो किताब है कि जो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, जखीम नहीं है, लेकिन इसके बारे में आयतुल्ला हसन ज़ादा आमली, आयतुल्ला जवादी आमली सब ने ये बात कही है कि ये अल्लामा तबातबाई का जेम है जो उन्होंने किया ना, जितना भी उन्होंने लिखा है, और इस किताब में, इस रिसाले में उन्होंने जितने खुल के बात की है, क्योंकि अल्लामा तबातबाई की एक बहुत खास बात ये रही है कि वो खुल के बात नहीं करते, इशारों में बात करते हैं। यानी जैसे तफसीर अल मीज़ान भी जो है ना, तफसीर अल मीज़ान में भी इशारे ज़्यादा हैं। अगर आप हायर लेवल्स की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ के हवाले से उन्होंने खुल के बातें नहीं की हैं मीज़ान में, इशारे दिए हैं ज़रूर, वैसे हाँ समझा दिया है, उसके कुरान के जाहिर को अच्छे से समझा दिया, लेकिन इस किताब में उन्होंने काफ़ी ऐसी गुफ्तगू की है कि जो मतलब डीप भी है और जाहिरन जैसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स भी है, कि अगर इसीलिए इस किताब को शायद मैं कभी भी हिम्मत नहीं कर सकूं कि आम हम अपने दर्स में इसको डिस्कस करें या इसकी तफसीर व तशरीह करने की कोशिश करें, लेकिन बहरहाल इसमें एक मकाम है कि जिसमें वो ये फरमाते हैं कि हमने जितने भी तफसील से बात की है वो ये है कि खुदा तक पहुंचने की नज़दीक तरीन राह राहे मारिफत नफ्स है। खुदा तक पहुंचने की नज़दीक तरीन रास्ता जो है वो अपने नफ्स में से होके गुजरता है। क्यों? इसलिए कि खुदा किसी भी वजूद में, कायनात में उतना नहीं है जितना इंसान में है, यानी तजल्ली खुदा इस पूरी कायनात में इतनी शिद्दत से किसी भी मखलूक में मौजूद नहीं है जितनी वजूद है इंसानी में, तो किसी भी मखलूक में, किसी भी मखलूक में अल्लाह की तजल्ली उतनी इंटेंस और उतनी डेप्थ के साथ या उतनी वजाहत के साथ नहीं है जितनी वजूद इंसानी में पाई जाती है। तो ये नजदीक तरीन रास्ता है। खुदा तक पहुंचने का। अच्छा, उसके बाद फरमाते हैं कि फिर बहरहाल अब इसमें कि जो अहले मारिफत हैं, अहले मारिफत की नज़र में तमाम शरीयत और तमाम दीन हकीकतन इसी मकसद के लिए नाजिल हुआ है, लेकिन लोगों की अक्सरियत या लोग इस हवाले से डिवाइडेड हैं। अरे बात समझ, यानी खुदा तक पहुंचने की राह, खुदा तक पहुंचना यानी अपने मकसद हयात तक पहुंचना, अपने मकसद खिलकत तक पहुंचना, उसका रास्ता जो है नजदीक तरीन रास्ता क्या है, राह मारिफत नफ्स है। और जैसा कि अल्लामा तबारकुल्लाह ने बगैर नाम लिए ऐसी किताब में लिखा है कि हमने अपने उस्ताद से पूछा, किसी उस्ताद से, नाम नहीं लिया, कि अगर ये बात इतनी अहम है तो शरीयत में इसका जिक्र उस तरीके से क्यों नहीं है, यानी शरीयत एकामात शरीयत और उसमें। तो उन्होंने जवाब दिया कि शरीयत में वो कौन सी चीज है जो तुम्हें इस तरफ मुतवज्जे नहीं कराती है। लगे हमारे उस्ताद ने हमको ये जवाब दिया कि शरीयत में वो कौन सी चीज है कि जो तुम्हें इस राह की तरफ मुतवज्जे नहीं कराती है, कि अपनी जात की मारिफत और अपनी हकीकत तक पहुंचो। बहरहाल, लेकिन फिर उसमें कि यहां पर हम ये बात कहते हैं कि अब देखें वही बात के इल्म और उसकी क्या अहमियत है, कि हम ये कहते हैं कि सैर बसूए खुदावंद सुभान नीज नतीजा फहम इल्मस्त, कि खुदा की तरफ जो सैर है वो इंसान के फहम और इल्म के नतीजे में पैदा होती है। यानी जितनी आपकी मारिफत है, जितना आपका इल्म है, जितनी आपने सच्चाई को पहचाना है, उसके मुताबिक ही आप अल्लाह की तरफ हरकत कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ आपकी मूवमेंट होगी, वो डिपेंड करेगी उस पर। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि ये मसला कामिलन रोशन और वाज़े है कि जो इतने शोबे हैं इंसानों में, इतनी डाइवर्जन्स हैं, इतने लेवल्स हैं, ये सब के सब सिर्फ एक चीज की वजह से हैं। ये नहीं है कि खुदा ने दीन अलग अलग भेजे हैं, ये नहीं है कि शरीयतें लोगों के लिए अलग अलग नाजिल हुई हैं, बल्कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इल्म और फहम इंसानों और मुस्लिमीन की बिना पर हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें ये फरमाते हैं कि तीन गुरोह हैं मुसलमानों में, तीन गुरोह हैं। पहला गुरोह जो है मर्दुम आदी, मर्दुम आदी का मतलब यह है कि वो अपने दिन और रात इस फिक्र में गुजारते हैं कि तदबीर माश क्या होगी, खरीद व फरोश किस तरीके से होगी, किसके पास आना है, रिश्तेदारियां कैसे मेंटेन होंगी, किससे मुलाकात होगी, जब उनकी सुबह होती है उनकी तमाम हिम्मत और तलाश जो है वो रोजाना के काम और इस्लाह उमूर दुनियावी में गुजरते हैं। ये शख्स जब अल्लाह की तरफ दावत देने वाले की पुकार को सुनता है कि जो उसे गफलत से बेदार होने की दावत दे रहा हो, उसको बशारत दे रहा हो, मगफरत इलाही और रिजवान इलाही बहिश्त की तरफ पुकार रहा हो, उसके बाद उसको आतिश जहन्नम से कि जिसका ईंधन खुद इंसान और पत्थर होंगे, उससे डरा रहा हो, तो इनकी जो यानी इस किस्म के लोग जो हैं वो ये तमाम की तमाम पुकार और फरियाद को अपने उसी दुनियावी मामलात और दुनियावी पैराए में ही सुनते और समझते हैं। बात वाज़े हो रही, यानी क्योंकि वो जितना भी कि उनकी जो तलाश थी फकत क्या थी कि हमारा पेट अच्छे से भर जाए, हमारी ख्वाहिशात सही तरीके से पूरे हो जाएं। और अब इस जुमले पे ख़ास तौर से गौर कीजिएगा, मैं फ़ारसी पढ़ देता हूँ। हीच फुर्सती बराए गौर व बर्रसी दर आयात इलाही व कलमात आ पैदा न कुनद, यानि वो कोई फुर्सत अपने औकात में से इस बात के लिए नहीं निकालते हैं कि खुदा की आयतों पर और खुदा के कलमात पर गौर करें। ठीक है, उनका जो दीन है वो क्या है कि जब उन्होंने किसी पुकारने वाले को, वाज़ व नसीहत करने वाले को सुना कि जो बहिश्त की तरफ बुला रहा था, जहन्नम से डरा रहा था, उन्होंने उस पुकार को उसी लेंस के जरिए से देखा कि जो उनकी आंखों पर चढ़ा हुआ है दुनिया तलबी और दुनिया में मशगूलियत का, और उसी की मुनासिबत से उन्होंने अपना दीन बना लिया, उनका दीन वजूद में आ गया। कि उनका जो दीन है वो भी हकीकतन क्या है कि हम एक ऐसी जिंदगी की तरफ चले जाएं, यानी कि दीन को किस तरीके से लेना है कि हमारी जिस तरीके से कि दुनिया की जिंदगी में हम अपने आराम और आसाइश और रिहाइश और खाने और पीने और हर चीज का ख्याल रखते हैं और उसको सेट रखते हैं इन मामलात को, ऐसे ही हमारे यही सारे मामलात जो हैं वो आखिरत के हवाले से भी सेटल डाउन हो जाएं। अब बात समझ रहे हैं, ये खासा बारीक एक बयान है।
या वो ये चाहते हैं कि दीन की जो फादियत है उसको दुनिया के कामों में भी इस्तेमाल करें।
वो भी वो अलग बात है, लेकिन ये कि वो नहीं, वो जो दीन बना रहे हैं, इन्हें पहला जुमला यही था ना कि हर इंसान का दीन उसके फहम और इल्म के मुताबिक है, उस मारिफत के मुताबिक है जो उसने डेवलप की। तो इन्होंने क्या मारिफत हासिल की कि क्योंकि इन्होंने अपने आप का जो मेन गोल था वो दुनिया तलबी और दुनिया में रिफा और आसाइश और सुकून था, इन्होंने जब दीन की तरफ दावत देने वाले की पुकार को सुना तो इन्होंने उसे भी उसी नजर से देखा और अपनी जिंदगी के औकात में कोई टाइम रिजर्व नहीं किया कि ये खुद आया तो कलमात इलाही में गौर फिक्र करते, उसको लिसन करते, उसको समझते, उसकी हकीकत तक पहुंचते, उसकी गहराई में जाते। तो इनका पूरा का पूरा दीन क्या रहा, यानी इन्होंने जब दीन को इख्तियार किया, इन्होंने जब दीन को एडॉप्ट किया, इन्होंने जब दीन के मुख्तलिफ अरकान पर अमल किया, तो उसका पर्पस खाली इसके सिवा कुछ भी नहीं था कि जैसे हम दुनिया में अपनी रिफा और आसाइश और खाना और पीना और मादी सुकून का ख्याल रखते हैं, हमने ये बात कबूल कर ली कि ठीक है मरने के बाद हम ख़त्म नहीं होंगे, मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, लेकिन उस ज़िंदगी में हमारा पर्पस सिर्फ क्या है कि जिस तरीके से दुनिया में ये ज़िंदगी खाने पीने और सुकून और आराम से गुजरती है वैसे वहाँ भी गुजर जाएगी। ठीक है, एक लेवल, और ये ज्यादातर अफराद इस लेवल पर है, ये मुसलमानों की बात हो रही है। ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, कोई काफिर मुशरिक का मामला नहीं है। तो अब ये बयान तुलानी है, लेकिन मैंने उसका निचोड़ खुलासा आपको बता दिया। ठीक है, और इसी तरीके से जब वो खुदा की तरफ देखते हैं, यानी उनकी खुदा की मारिफत ऐसी है कि जैसे कोई हाकिम हो, दुनियावी हाकिम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब अपनी जिंदगी को भी सारा दुनियावी पैराए में ही, दीन को भी उसका वही लिबादा उढ़ाया है, दीन को भी उसी पोशाक पहना के देखा है, तो वो खुदा को भी दुनियावी हाकिम की तरह ही समझते हैं कि गोया के अर्श उसका तख्त है और जितने भी मलाइका हैं वो उसके कारिंदे हैं जो जमीन और आसमान में फैले हुए हैं और उसके काम को करते हैं, और इस बात को मानते हैं कि जितना भी मतलब चीजें हैं उसका मालिक अल्लाह है, और ये तमाम की तमाम चीजें मान रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए जो बाकी तमाम की तमाम चीजें हैं कि जैसे फरमाते हैं कि खुदा जो है मखलूकात को जिंदा करता है, उनको मार देता है, इन्हें मौत दे देता है, फिर उसके बाद ये कि वो इंतकाल के बाद एक लिहाज से ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक दिन और उठाए जाएंगे, लेकिन आखिरत का जो कंसेप्ट है उनका, वो भी एक तरक्की याफ्ता दुनिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि दुनिया की जो एक बड़ी एक्सट्रीम हालत होगी कि जैसे कुछ को पकड़ के आग में डाल दिया जाएगा, आग भी दुनिया जैसी उनका समझ है, किसी को जन्नत, जन्नत भी दुनिया के ही एक एक्सट्रीम लेवल के आसाइश और मज़े वाला उनका तसव्वुर है। तो ये उनका दीन है, ये उनका आखिरत का तसव्वुर है, ये खुदा का तसव्वुर है, ये ज़िंदगी है। और ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं, और यानी ये बताना चाहते हैं कि जो मारिफ़ कुरानी हैं और कलेमात इलाही हैं, उसमें से इनका कोई नसीब नहीं है, इनका कोई हज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। दीन में से उन्होंने ये लिया और ये मारिफत बनाई। दूसरा जो ग्रोह है वो कहते हैं कि जाहिदान और आबिदान, जाहिदीन और आबिदीन। जाहिदीन का जो वो है, ये वो लोग हैं कि जो दुनिया के फना होने को इबरत की नज़र से देखते हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी लज्जतें हैं उसको नापायदार समझते हैं, और इस वजह से वो क्या हो गए हैं कि वो जाहिद और आबिद हो गए हैं। जाहिद और आबिद का मतलब, यानी जोहद का मतलब ये होता है कि वो शख्स जो दुनिया में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करे, दुनिया से और दुनिया की लज्जतों से और उन चीज़ों से अपने को दूर रखे। तो इस तरीके से ये लोग मोहब्बत दुनिया में इन्वॉल्व नहीं है, और उनकी तलाश और कोशिश ये नहीं है कि बस फ़कत दुनिया कमाएं या दुनिया की ज़िंदगी में सुकून से रहें। तो वो जो हैं वो अपने तहजीब नफ्स और इस्लाह अमल की तरफ भी तवज्जो करते हैं, और तकवा और इन चीज़ों की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो बुनियादी तसव्वुर है या बुनियादी तसव्वुर जो खुदा और आखिरत के बारे में है, वो ये है कि बहिश्त की नेमाते जावेदानी का लालच और हमेशा के अजाब से डर और खौफ, यानी इन आबिदीन और जाहिदीन पर कि ठीक है ये उनकी तरह दुनिया में इन्वॉल्व नहीं है, ये अपने तज़किया नफ्स की भी एफर्ट करते हैं, दुनिया से अलग रहने की भी कोशिश करते हैं, तकवा बमानाए परहेज़ अज़ हराम वो भी हासिल करने की एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके सामने जो मेन गोल है किसके लिए काम कर रहे होते हैं कि ताकि बहिश्त की हमेशा की नेमतें नसीब हो जाएं हमारे। और इनका तसव्वुर बहिश्त और दोजख बहरहाल पहले वालों से बेहतर है, लेकिन वो उन्हीं अबदी और दायमी नेमतों की तलब में होते हैं और तमा लालच में होते हैं, और हमेशा के रहने वाले अजाब से खौफजदा होते हैं, इसलिए वो अपनी इबादत और जहद और तकवा और उन सब चीज़ों पर मेहनत कर रहे होते हैं। और उसमें जो एक बात फरमाते हैं कि इनका जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि ये तमाम यानी कि आगे वाले तमाम मामलात को, आखिरत को ज़्यादातर जिस्म के जिस्मानियात के पैराए में ही समझ रहे होते हैं, यानी जैसे आखिरत की आग दुनिया की आग जैसी, या आखिरत की नेमतें बहिश्त की नेमतें दुनिया की नेमतों जैसी। तो वो चीज़ पहले से थोड़ा बेहतर है, पहले से बेहतर है, पहले वाले तो बिल्कुल ही है ना, कि जैसे खुदा जब शफात का कंसेप्ट, हमने बात नहीं की कि शफात का क्या कंसेप्ट है, कि शफात का मतलब यह है कि अगर इमाम अली जो हैं वो वहां पर खुदा की बारगाह में बाइज्जत हैं तो वो सारे लोगों को निकाल के ले जाएंगे, जैसे दुनिया में बासर आदमी ले जाता है अपने सारे पार्टी को, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको सजा दे या पनिश करे। तो ये उतने उस जगह पे नहीं है, लेकिन ये अभी भी उस मारिफ के या मारिफत के उस मरहले पर नहीं पहुंचे हैं कि जो हकीकतन जो हयात के बुलंद दरजात और अवालिम हैं उन तक पहुंच सकें। ये दो हो गए। तीसरा गुरु जो है कि जिसको फरमाते हैं वो हैं कि मुहिब्बान और मुश्ताकान, यानी अहले मोहब्बत और अहले शौक, ये तीसरा गुरु है। और ये वो गुरु है कि मोहब्बत ने, यानी उसकी मारिफत हकीकतन मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई है। उसने जो कुछ भी पहचाना, सबसे पहले जाहिर है कि अपने आप, अपनी मारिफत नफ्स और फिर मारिफत नफ्स से मारिफत खुदा या आयात आफाकी और अनफुसी के ज़रिए से जो है खालिक और राज़िक और मालिक की तरफ पहुंचना। लेकिन ये मारिफत मारिफत नहीं रही खाली, ठीक है। जैसे आबदीन और जाहिदीन हैं, उनकी मारिफत कहाँ पे आके रुक गई? जन्नत और जहन्नम पे आके रुक गई। उनकी मारिफत यहां पे रुक गई, यानी कि मेनली वो जो भी कर रहे हैं या जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं वो इसलिए कि हम यहां तक हो जाए, इससे बच जाए, ये पालें। लेकिन ये जो ग्रोह है इसकी मारिफत जन्नत और जहन्नम से आगे बढ़कर खुदा की मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई है, ट्रांसलेट हो गई है। और इनके लिए हकीकतन बेहिश्त और जहन्नम का मायना ही तब्दील हो गया है। सही है। अब इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी मिसालें दी थी कि नेचुरल सिस्टम्स में इन तमाम बातों को समझने की बहुत अच्छी मिसालें मौजूद हैं कि यानी कि इंसान का जो सफर है, एक सफर ये होता है कि आप खुद जाएं चलें या आप किसी चीज को ड्राइव करें टूवर्ड्स द डेस्टिनी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जो मकनातीस और उसके उन मैग्नेटिक मटेरियल्स की है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो मकनातीस की तरफ एफर्ट से नहीं जाता है बल्कि अट्रैक्टिव पावर की वजह से हरकत करता है। यानी मकनातीस उस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेता है, ना कि ये एफर्ट करके उस तक पहुंचता है। क्या समझ में आ रही है? यानी एक चीज है जिसको आपको एक जगह तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ड्राइविंग पावर अप्लाई करनी पड़ती है, उसको ड्राइव करके ले जाना पड़ता है।
लेकिन उसको खींचने के लिए उसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में आना।
हाँ सही, बिल्कुल। तो यही तो वो मोहब्बत है। आपकी मारिफत का रोल क्या है? मारिफत का रोल ये नहीं है कि आप खाली जाएंगे अजाब सवाब में फंस जाएं। मारिफत का रोल ये है कि आप उस मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचें। ये मारिफत का, यानी अगर हम मारिफत की राह पर चलना चाह रहे हैं, अगर हम उस इल्म के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं, तो मेन पर्पस क्या है होना चाहिए कि उस फील्ड में आए ताकि जाज़िबा इलाही हमें अपनी तरफ खींच ले। तो ये फरमाते हैं कि बारिक़े मोहब्बत तमाम वजूद उरा फरा गिरफ्त है, यानी उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, हकीकी इल्म क्या है कि जिस तरीके से आप खाली अपनी औलाद का इल्म नहीं रखते हैं बल्कि वो इल्म आपके पूरे वजूद को एक मोहब्बत की कैफियत में जकड़ लेता है या नहीं? यानी आप देखें कि वो जो मारिफत है वो मारिफत खुद ब खुद मोहब्बत में ट्रांसलेट हो जाती है और वो मोहब्बत आपके पूरे वजूद को, तमाम वजूद उरा फरा गिरफ्त है, उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। व जज्बा शौक, और शौक का जज्बा उरा बसूए लिका अल्लाह जज्ब करदा, कि इस लिका अल्लाह की तरफ वो उसको जज्ब, यानी वो बहालत जज्ब में जज्जाबियत की बिना पर सफर करता है, ना कि एफर्ट की बुनियाद पर। सही नहीं है, कोशिश नहीं है हरकत, کی بنیاد بلکہ جاذبہ ہے، اٹریکشن ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو وجود کے ارکان ہیں، یعنی وجود کے ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے تو ہماری پرسنالٹی میں، یعنی ایک تو ہمارا وجود جسمانی وجود ہے، لیکن حقیقتاً جو ہمارا وجود ہے، جو میرا نفس ہے، اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں. پہلو ہیں، یعنی مثال کے طور پر کہ میں عالم ہوں، میں پروفیشنل ہوں، میں عقل والا ہوں، میں یہ ہوں، وہ ہوں، وہ ہوں، باپ ہوں، شوہر ہوں، بیٹا ہوں. صحیح، یہ مختلف ارکان ہیں نا میرے وجود کے. یہ محبت وجود کے، اور اسی وجہ سے جو لوگوں نے کہا نا کہ علامہ طباطبائی نے اتنا کھل کے بات نہیں کی ہے کسی جگہ، انسان کے وجود کے تمام ارکان اس محبت کی وجہ سے درہم برہم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی اس محبت کے مقابلے میں پھر کوئی چیز نہیں باقی رہ جاتی کہ میں یہ ہوں. ختم، ختم، شکستہ، شکستہ، ختم. وہی جو امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں اور ائمہ علیہ السلام کے، اگر آپ ان جملوں کو دیکھیں نا تو اس سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ نتنگ، کچھ بھی نہیں باقی بچتا پھر اس محبت کے آگے.
اس میں جی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ جو ہوتا ہے نا، جب وہ اس کو ایڈکشن ہو جاتا ہے، مان لیں کوئی بھی ڈرگ کا، تو اس کے سامنے پھر ساری یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں.
تو کیا یہ عقل کی بنا پر ہے؟ عقل ہے، بالکل. یعنی ابھی یہی تو ہم نے بات کی کہ معرفت محبت میں کنورٹ ہوتی ہے. پہلا جملہ آپ نے غور نہیں کیا؟ معرفت ہے جو اس محبت میں کنورٹ ہوتی ہے. دیکھیں جو چیز، وہی بات ہے نا کہ ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے، لیکن جو اس درجے محبت تک پہنچ جاتا ہے نا، وہ اس کے لیے میرا، یعنی ہر چیز میری ہے اور کچھ بھی میرا نہیں ہے. یعنی کچھ بھی میرا نہیں ہے اس لیے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اور سب کچھ میرا ہے اس لیے کہ میں عبد خدا ہوں اور سب کچھ خدا کا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اس قسم کے لوگوں میں جو فرق ہوتا ہے نا، جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ولی خدا ہے نا، وہ اگر آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کائنات کو دیکھتا ہے، وہ اس کائنات کے ساتھ اپنے کو ہم آہنگ اور ایک پاتا ہے. یعنی اگر ہم اس درجہ ولایت تک پہنچ جائیں تو آپ پورا جو بھی عالم خلق ہے نا، آپ اس کے ذریعے سے لذت لیتے ہیں، وہ آپ کے ذریعے سے لذت لیتے ہیں. ہم بہت دور ہیں ابھی اس جگہ سے. یعنی یہ وہ ونس ہے، ونس والا ایسپیکٹ ہے، حقیقتاً توحید ہے یہ. کہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں نا، کہ رسول خدا جب ایون نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا کہ جب رسول خدا گزرتے تھے، شجر و حجر سے سلام کی آواز آتی تھی، اور بلکہ آپ مسجد نبوی میں ایک درخت پر ٹیک لگا کے، آپ شروع شروع میں جو مسجد نبوی تو خالی ویسی ہی تھی، اس پر ایک درخت پہ ٹیک سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب باقاعدہ ممبر بن گیا اور آپ وہاں سے ہٹ گئے، تو لوگوں نے اس درخت کے رونے کی آواز سنی. تو یہ وہ جس کو شہید مطہری نے ایک بڑا بہت اچھا جملہ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ انفرادی خودی سے نکل کر یونیورسل کائناتی خودی کا ادراک حاصل کر لینا. یعنی ہماری جو سول ہے، ہمارا نفس ہے، وہ یونائٹڈ ہو جائے ود دا ہول یونیورس اور کریشن. صرف کس بنا پر؟ बंदगी खुदा की बिना पर, खुदा का होने की बिना पर, ठीक है। इस किस्म की बातें दूसरे मजाहिब में भी हैं, लेकिन इतनी परफेक्शन के साथ नहीं है जितना इरफान इस्लामी में मौजूद हैं ये तमाम नज़रियात और कंसेप्ट। मुश्ताक अहले शौक, यानी अब इसमें भी आपने इश्तियाक वाली बात की ना, तो इसमें भी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ वो करूँ तवज्जो दिलाऊँ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त भी ये जुमले मौजूद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसमें भी ये जुमले मौजूद हैं करबला में कि जल्दी करो जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है। सुने आपने ये जुमले, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है, यानी मोमिन नहीं है बहिश्त का मुश्ताक इस दर्जे का, जन्नत उसके शौक में है कि जल्दी आए मेरे पास। से आप अंदाजा करें कि जो शौक खुदा में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तमाम कायनात उसकी मुश्ताक होती है, इंक्लूडिंग जन्नत, ठीक है। तो ये वो दर्जा है कि जिसको क्या फरमाते हैं कि मुहिब्बीन और मुश्ताकीन, अहले मोहब्बत और अहले शौक। तो ये अहले मोहब्बत वो हैं कि जिनके लिए जो आयतें बहुत सारी इन्होंने यहाँ कोट की हैं जो आप सुन भी चुके हैं कि फला तगुर्रन्नकुम हयात दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, के तुम्हें जो है वो हयात दुनिया धोखे में ना डाल दे और धोखा देने वाला अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखा ना दे दे। इस आयत पर हमने काफी वक्त सर्व किया था सूरह फातिर की आयत पे कि ये ना हो जाए कि तुम इस दुनिया की जिंदगी की ऐनक आंख पर लगाकर और हकायक को देखने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर जो भी हयात दुनिया है ये सिवाय लहब व लहब के और कुछ भी नहीं है। अगर इसके जरिए से इसके पैराए में देखने की कोशिश की तो हमेशा किसी गलत नतीजे पर ही पहुंचोगे। हकीकत को देखने के लिए बातिनी और कल्बी आंख का खुलना वाजिब है, जो हमें सच्चाई दिखाए, वरना जैसे आपने देखा ना कि वो जो पहले जन दो ग्रोहों की तरफ बात हुई वो वही है कि जो दुनिया की ऐनक 12 लाखों में चढ़ी हुई है और जिसके जरिए से वो यानी हकायक को। तो ये बात वाजे हो गई कि दो बातें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बयान फरमाते हैं। एक ये है कि दीन और शरीयत एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये नहीं है अलग अलग लोगों के लिए अलग दीन अलग शरीयतें नहीं आई, लेकिन इंसान का इल्म और फहम है जो हकीकतन ये तफावत और फर्क पैदा करता है लोगों में, यानी मारिफत का फर्क है, इल्म का फर्क है, ठीक है। और इल्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कमाल है वो सिर्फ और सिर्फ जानने वाला इल्म नहीं है, बल्कि वो इल्म उस चीज़ का नाम है कि जब इंसान की मारिफत जो है वो उसको दुनिया के थ्रेशहोल्ड से ऊपर ले निकाल कर मलकूत तक पहुंचा दे। और उसकी अलामत क्या है कि इंसान क्या हो जाए, मुहिब हो जाए, अहले शौक हो जाए, उनके अंदर वो जाज़िबा अपने अंदर हम महसूस करना शुरू कर दें उस तरफ, यानी कि वो कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हमें खुदा उस तरफ खींच ले उस कशिश तक। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इसमें ही अब दूसरे मरहले पर, जब हम इल्म की और उतुल इल्म की बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को भी आपको हाईलाइट करा दूं और फिर आखिर में एक हम थोड़ा सा दस्तूरुल अमल पे बात कर लेते हैं कि व्हाट टू डू व्हाट टू डू अगर हम यहाँ पहुँचे हैं, वो दस्तूरुल अमल भी आपको पता ही है, मैं बस याद ही दिलाऊंगा इंशाल्लाह। इल्म के हवाले से सूरह जुमा की आयत जो है कि हुवल लज़ी बअथा फिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो अगर आप उस दरजे से ऊपर आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन्हें विलायत में से क्या लेना होगा? बताएं इस आयत से क्या समझ में आ रहा है? विलायत से जाहिर है कि विलायत ही हमें लेके चलेगी हिदायत की राहों पर, लेकिन विलायत में भी प्रॉब्लम यही है ना कि जिस तरीके से कि बाकी तमाम जिंदगी के उमूर में हैं कि हम उसे ज्यादातर खुद अपनी ऐनक से देखते हैं, ठीक है ना। इस जुमले को खास तौर से ध्यान में रखिएगा कि कौन लोग प्रॉब्लम में हैं, जो मर्दों में आदि या पहला ग्रोह कौन सा है कि जो अपने औकात में से कोई टाइम स्पेयर नहीं करता है कि अपने को विलायत का शागिर्द बनाए। बात समझ में आ रही? यानी उसने दीन की पुकार को सुना, उसने जाहिरन इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन सिर्फ किस हद तक कि जैसे मेरी दुनिया वेलफेयर वाली है और उसके लिए मैं एफर्ट कर रहा होता हूं, वही वेलफेयर आगे भी एक्सटेंड हो जाए, स्ट्रेच हो जाए बस। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के औकात में कोई फुर्सत नहीं रखी, कोई टाइम नहीं रखा, डिवोट किया कि उसको देखें और समझें कि वो हमसे क्या कह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। इन्हें आया तो कलमात इलाही पर गौर करने का उसके पास कोई फुर्सत नहीं है पूरी जिंदगी में। तो विलायत जो है वो सबसे पहले आपको क्या करती है, जो रसूलों को खुदा ने भेजा कि इंसानों को अपनी विलायत में लो, उनको तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाओ, तो उसका प्रोसीजर क्या है? यतलु अलैहिम आयातिही, कि सबसे पहले हमें उनके साथ आयतों की तिलावत करना होगी। वह युज़क्कीहिम, और वो फिर क्या करते हैं, आपका तज़किया करते हैं। तो आयात की तिलावत जो है वो बगैर तज़किये के असर नहीं करती है। खाली अगर आयतों की आप तिलावत करते जाएं लेकिन कल्ब में तज़किया ना हो, आयात की तिलावत का असर नहीं होगा। और फिर अगर ये दो चीजें जमा हो जाएं तो वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तो फिर वो हजरात जो औलिया खुदा हैं, जो अंबिया और आइम्मा हैं, वो आपको किताब और हिकमत का क्या देंगे? इल्म अता करेंगे। तो इससे आप समझ रहे हैं कि आईने के मेनली जो आपका वही फ्रूट बास्केट है वो क्या है? इल्म, इल्म किताब। और इल्म किताब का मतलब क्या हुआ बताएं? यहां पर इल्म किताब का मतलब क्या हुआ? जो कुछ किताब में है उसकी हकीकत आपके कल्ब पर रोशन हो जाए, और वो हकीकत रोशन होने के बाद आपको हिकमत अता करे। और हिकमत का, जैसा मैंने कहा था कि जो मिनिमम लेवल है हिकमत का वो ये कि आप अपनी लाइफ में हर किस्म के डाउट और एम्बिग्यूटी से बाहर आ जाएं, फुरकान नसीब हो जाए आपको किसी भी जगह पर डिसीशन मेकिंग में, आपको किसी भी हिजबैस में या किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे आप कि करूं नहीं करूं, ये सही है वो सही है, ठीक है ना। यानी कि जैसे वही मिसाल हमारे सामने हुर हमारे साथ के, यानी हुर जो हैं हम उनको हकीम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने सही हुक्म दिया इन द एंड, अगरचे के शुरू में वो फॉल्टर कर गए थे लेकिन उन्होंने आखिर में आके सही हुक्म दिया कि नहीं ये सही है ये गलत है। और हिकमत के अंदर जो एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है वो क्या है कि हिकमत इंसान को अमल की भी ताकत देती है, ठीक है, फकत ये नहीं कि ये सही है गलत है, अमल भी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने पिछली दफा बात कर ली थी, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि वही इलाही उसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे, वही क्या है, मतलब इल्म है या कोई और चीज है?
वो इल्म जो कसब नहीं किया जा सकता खुदा की तरफ से,
लेकिन किस कैटेगरी में आएगा? इल्म की कैटेगरी में आएगा। वही यानी वही जो है, और जैसा कि आयतुल्लाह जवादी अमली फरमाते हैं कि वही सुल्तानुल उलूम है। सुल्तानुल उलूम का मतलब है कि इंसान ने जितने भी उलूम इंसान ने बनाए, हासिल किए, पहुंचे, उनमें से कोई इल्म भी जो है वो वही के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता, उस इल्म के मुकाबले में नहीं आ सकता जो इल्म वही है। एक दो आयतें बस मैं आपको सुना के और फिर जो हम दस्तूरुल अमल की बात कर रहे थे उस पे आ जाते हैं कि सूरह आले इमरान, शहद अल्लाहु अन्नहू ला इलाहा इल्ला हुआ, क्या माना हुआ इसका? शहद अल्लाहु, गवाही दी अल्लाह ने। किस बात की गवाही दी? अन्नहू ला इलाहा इल्ला हुआ, कि बेशक उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। वल मलाइकतो, और मलाइका ने, वो उलुल इल्म कायमम बिलकिस्त, और किनों ने गवाही दी? उन साहिबान इल्म ने जो किस्त पर कायम हैं। किस्त का मतलब क्या होगा? काफ से सीन पोए, किस्त यानी अदल, अदल के उसमें आता है किस्त यानी। लेकिन अदल और किस्त में जो एक थोड़ा सा बारीक फर्क ये बयान किया जाता है कि किस्त जो है वो अदालत अमली का नाम है, यानी वो जस्टिस जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो। ठीक है, अदल का एक माना ये भी हो सकता है कि आप कहें कि हाँ मैं अदालत मतलब इल्म रखता हूँ, जानता हूँ, बयान करता हूँ, समझता हूँ। लेकिन जब किस्त की बात करेंगे, इसी तरीके से खुदा ने काफ़ी जगहों पर किस्त की बात की है, यानी किस्त का मतलब यह है कि वो अदालत खाली आप जानते नहीं हैं बल्कि आप उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है, वो ये है कि अगर मुझे पता चलाना हो कि इस जिंदगी में उतुल इल्म या उलुल इल्म कौन से लोग हैं, तो मैं कैसे पता चलाऊंगा?
जो अदल को इंप्लीमेंट
जो साहिबान किस्त होंगे।
उसकी कोई एग्जांपल?
साहिबान किस्त यानी कि जिस तरीके से कि खुदा ने अंबिया को जो हुकूमत दी, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो हुकूमत की, कि वो क्या थे? ये उतुल इल्म हैं और साहिबान किस्त हैं। ठीक है, कि ये भी एक लिहाज से इंसानों के जो हमारी दुनियावी जिंदगी है उसके पर्पजेज में से ये पर्पज खुदा ने बयान किया कुरान में। जी, अगर कोई सवाल यहाँ आ रहा है तो कर लें। जाहिर है कि यानी कि यहाँ पर जब बात हो रही है उलुल इल्म कायमम बिल किस्त, तो ये किसी हुकूमत की बात नहीं हो रही है, लेकिन इज्तमाई तौर पर भी जरूरत है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो आप देखें कि इन लोगों की कोई फजीलत आपको दिख रही है? इन्हें खुदा किसके साथ मिला रहा है? अपने साथ। अल्लाह तौहीद का गवाह है, और कौन है? मलाइका हैं। और इंसानों में से कौन है उस फहरिस्त में जो तौहीद परवरदिगार के गवाह हैं? उलुल इल्म कायमम बिल किस्त, साहिबान इल्म जो किस्त पर कायम, अदालत पर कायम, यानी अदालत अमली पर कायम है। सिर्फ अदालत बयान नहीं करते बल्कि अपनी जिंदगियों में अदालत अमली पर कायम। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इल्म और उलुल इल्म और उतुल इल्म का रुतबा क्या है? ये खुदा के साथ उसकी गवाही में शामिल है। और कौन सी गवाही? तौहीद की गवाही में शामिल है। तो वो जो अल्लामा तबातबाई बयान फरमा रहे हैं कि इंसानों के दरजात में तफावत है इस बिना पे, इंसानों के दरजात में जो ये ग्रेडेशन है वो है ही इल्म اور معرفت اور فہم کی بنیاد. کچھ لوگوں کا جو علم ہے وہ اب یہ بھی ہے، یعنی ابھی ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ابھی تو ہم خالی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا علم جہالت میں بھی کنورٹ ہوتا ہے، عالم ہوتے ہوئے جاہل ہوتے ہیں. اولہ اللہ علی علم، یہ بھی سورہ جاسیہ کی آیت ہے کہ کچھ لوگ اپنے علم کی بنیاد پہ گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بات سمجھ لی کہ دنیا میں اوت العلم کو اگر آپ کو پہچاننا ہو تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس بات سے نہیں پہچانیں گے کہ وہ کتنی زیادہ دقیق بات کرتا ہے. یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے، آخرت میں تو خود ہی ظاہر ہو جائیں گے ان کے درجات. اس دنیا میں اوت العلم یا اولو العلم کو پہچاننے کا بنیادی پیمانہ کیا ہے؟ قائمم بالقسط. جو کسی غیر نے بھی کہا تو کیا کہا امام علی کے بارے میں؟ ان کی عدالت نے ان کو قتل کیا ہے. یہ ہے اولو العلم کی حقیقی پہچان. ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں، کیونکہ دنیا کی زندگی میں جیسے میں نے آپ سے کہا نا، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا. اور دنیا کی زندگی میں جو پرابلم ہے وہ یہ بھی ہے کہ علم، یعنی ظاہراً جسے لوگ علم سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی دھوکہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی فریب ہوتا ہے. تو حقیقتاً جو خدا کی بارگاہ میں اوت العلم ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ قائمم بالقسط ہیں. اور اس بات کو اس میں دیکھ لیجئے، ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی. کس کام کے لیے؟ ليقوم الناس بالقسط. اچھا، اگر اس کی، کیونکہ اعراب بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے جو ابھی یعنی قرآن میں یہ جملے موجود ہیں، اس کا مطلب ہے تاکہ انسان قسط پر قائم ہو، نہ کہ پیغمبر انہیں قسط پر قائم کریں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. یہ جو ابھی جو موجود جملہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ نے رسول بھیجے روشن نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا. لے لا، یعنی اس لیے، فار دا پرپز آف یقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان قسط پر قائم ہو جائیں. ان سب چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی دعوت دے گا، نبی ہدایت دے گا، نبی آیات کی تلاوت کرے گا. اگر تم نبی کی یا ولی کی خدمت میں حاضر ہوگے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے گا. لیکن قسط پر قائم ہونا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی. ٹھیک ہے، اس عدالت عملی کو، یعنی اب اس آیت سے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عدالت عملی جو ہے وہ پورے معاشرے کے لیے، فقط انسانوں کے لیے، ایک انڈیویجولز کے لیے نہیں ہے. کہ اس کا جو ایک مین پرپز ہے انبیاء کو بھیجنے کا اور کتاب کو نازل کرنے کا اور میزان یعنی فرقان اور اس کو نازل کرنے کا، اس لیے کہ انسان قسط پر آ جائے، انسان اس پر آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم دنیا میں، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جی اوت العلم سب سے بڑی فضیلت ہے، لیکن اب کنفیوژن ہے کہاں ڈھونڈیں اوت العلم کو. اگر ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کی گواہی خدا نے اپنے اور ملائکہ کے ساتھ برابر رکھی ہے، کہاں سے ڈھونڈیں ان کو؟ تو اس کی علامت کیا ہے؟ قائمم بالقسط، کہ وہ جو بھی رسولوں نے بیان کیا، جو بھی کتاب اور میزان ہے، اس کا جو ہے عدالت عملی، یعنی پریکٹیکل جسٹس جو ہے وہ اس میں. اب میں بس ایک آیت اور پڑھ کے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا کی نظر میں ان بندوں کی جو صاحبان علم ہیں، اس پر آپ غور کیجئے گا تھوڑا سا. کہ سورہ کہف آیت نمبر 65 اور 66، اور اگر آپ کو یاد ہو یہ کون سا واقعہ ہے، اس میں یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر والا 25. جمعہ تو بالکل شروع میں ہی ہے، ورس نمبر 2 ہے. فَوَجَدَ، یہ اب سورہ کہف میں پڑھ رہا ہوں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. اور یہاں سے بھی ہمیں جو ہے نا ایک بڑا اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جوان تھا جب وہ ڈھونڈنے نکلے، میں واقعہ تو میں نہیں پورا پڑھ سکتا، جو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر ڈھونڈ رہے تھے کسی انسان کو، اور خدا نے ان کی علامت یہ بتائی تھی کہ وہ انسان تمہیں کہاں ملے گا، جہاں پر دو دریا یا سمندر آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، مجمع البحرین، مچھلی زندہ ہو گئی. تو اس جگہ میں جب پہنچے تو فوجدہ، پایا ان دونوں نے، عبدًا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک عبد کو، ایک بندے کو، آتیناہ رحمتًا من عندنا، ہم نے اپنے پریزنس سے، اپنی عندہ، اپنی بارگاہ تو نہیں، یعنی اپنی پاس سے، اندیت سے اس کو رحمت دی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اپنی بارگاہ سے ہم نے اس کو علم عطا کیا تھا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے خدا کی نظر میں کس کی فضیلت ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں. اور یہاں سے اس آیت میں کیا بات بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے، کہ جو بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا اور جس کے لیے میں نے سورہ اسراء کی پہلی آیت بھی کوٹ کی تھی لاسٹ ٹائم، کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، یعنی بندگی جو ہے، جب جیسے دیکھیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیا ہے کہ یہ اس لیے ہے، یعنی خلقت اس لیے ہے کہ تم عبد ہو جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسی طریقے سے سورہ حدید کی آیت میں ہے کہ ہم نے کتاب اور میزان اور رسولوں کو بھیجا کس لیے، کہ اجتماعی طور پر انسان قسط کو، عدالت اجتماعی کو قائم کریں، اور اگر اس کے لیے حدید کی ضرورت پڑے تو وہ بھی یوز کریں، لوہا بھی یوز کریں. لیکن یہ تمام کے تمام جو پرپزز ہیں یہ کون سے ہیں، یہ الٹیمیٹ پرپز کو اچیو کرنے کے لیے مائل سٹونز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر عدالت اجتماعی نافذ ہو جاتی ہے، جو اب تک تو نہیں ہو پائی، کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہو پائی، اگر وہ نافذ ہو جاتی ہے تو وہ پلیٹ فارم بنے گا اس جگہ پر آنے کے لیے پورے معاشرے کی. یعنی کہ وہ آپ کا، وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ ڈائیونگ بورڈ، یا وہ جو بورڈ بنے گا، لانچنگ پیڈ، کہ یہاں سے آپ لانچ کریں اس اپنے، اس اوت العلم والے درجے تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ نے حاصل کر لیا تو مقصد خلقت پورا ہو گیا، اب آپ رک جائیے. نہیں، تو یعنی یہ جو بندہ تھا جس کا نام خدا نے نہیں لیا، ہم کہتے ہیں یہ روایتوں میں خضر ہے، اس کی پہچان کیا بتائیے، سب سے پہلی پہچان کیا ہے، میرا عبد، ہمارا عبد، عبدًا من عبادنا. اس کے بعد ہم نے اپنے پاس سے اس کو رحمت دی تھی، اور آخری علامت اس کی کیا تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو کمال انسان کیا ہے کہ جسے بارگہ خداوندی سے علم عطا ہو جائے، جو وہاں سے اس علم کو حاصل کرنے گئے، یہ ہے اوت العلم، یہ کمال انسان ہے، یہ مقصد خلقت ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس جگہ تک پہنچیں، اور وہ ہمیں اس رستے سے نوازے اور ہم پر اپنے لطف و کرم کو نچھاور کرے. ٹھیک ہے، اور اگلی آیت میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس یہ رتبہ و درجہ سمجھ میں آ جائے. جب انہوں نے ایسے بندے کو پایا، قال له موسیٰ، موسیٰ نے اس بندے سے کہا، هل اتبعك على ان تعلمني، क्या मैं आपकी इत्तेबा कर सकता हूँ कि अंतुअल्लिमनी के आप मुझे इल्म दें, आप मुझे इल्म दें, मिम्मा उल्लिमता उसमें से कि जो इल्म आपको दिया गया है, रुश्दन रुश्द हासिल करने के लिए। ये कौन बोल रहा है? ये वो इंसान बोल रहे हैं कि जो जिसने कलाम खुदा का शर्फ हासिल किया है। और अगर आप इसके उस जगह तक पहुंचे ना कि ये कब का वाकया है, तो ये हजरत मूसा के फिरौन को खत्म करने के बाद का वाकया। और बाज रिवायतों में ये जुमले हैं जो कि बहरहाल एक वो है क्वेश्चन मार्क है उस पर, कि जब इन तमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात भी मिल गई तो किसी ने उनके साथियों में से किसी ने यह जुमला कहा कि आपसे भी बढ़ के कोई साहिब फजीलत हो सकता है कि जिसको खुदा ने बुलाया हो, जिससे खुदा ने बराह रास कलाम किया हो, जिसको खुदा ने किताब दी हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब ये मुझे नहीं पता, नौजुबिल्ला अगर गलत है तो खुदा माफ़ करे, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव करता इस जुमले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे नजर नहीं आता कि किसी और बंदे पर भी खुदा ने इससे ज्यादा फजीलत और अजमत उसको दी हो। तो फिर फौरन उन पर वही नाजिल हुई कि जाइए और ढूंढिए। लेकिन उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी जो कमाल है, वो कमाल यह है कि आपने जितने अदब और आजिजी के साथ उनके सामने गए हैं, यानी ये बहुत बड़ा कमाल है। जैसे कि इसको आप समझ लीजिए कि ये इस तरीके से भी है कि यानी जब इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के बारे में फरमाते हैं तो क्या कहते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के अबीद, अरबी में गुलाम को कहते हैं, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। क्या बात है, इसको लिटरल तो नहीं ले सकते हम, कि जो हालांकि ये जुमला नहजुल बलागा में, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। अब ये इंतहाई, यानी उस नफ्स की इंतहाई शराफत है। तो इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कमाल आजिज़ी के साथ, कि जिसमें अल्लामा तबातबाई ने तफसीर मीज़ान में 9-10 नुकात इस पे पॉइंट आउट कराए, कि जो हजरत मूसा ने जिस तरीके से उनसे बात की है, खिजर थे या जो भी बंदे खुदा थे उनसे जो बात की है, वो जिस तरीके से उसमें से 9-10 नुकात पॉइंट आउट कराए कि अदब अपने कमाल पर है, कि हमें उससे ये सीखना चाहिए कि जब तुम किसी के पास जाओ इल्म हासिल करने तो कैसे जाओ और तुम्हारी क्या हालत होनी चाहिए। यानी कि इल्म हासिल करने की नीयत क्या है, रुश्द। इल्म हासिल करने की नीयत ये नहीं है कि इंसान जो है उस पर उसके जरिए से अपनी बढ़ाई जताए या उसके जरिए से दूसरों पर अपनी फजीलत साबित करे, रुश्द। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही है ना, यानी कि कुरान करीम में बहुत सारी आयतें जो मैंने आपके सामने रखी, हकीकतन मेराज, मेराज से बड़ी तो कोई फजीलत ही नहीं है इंसानियत के लिए। वहां भी अगर खुदा फरमा रहा है कि क्या किया, आप सूरह वन नजम की आयतों में देखें, जब खुदा ने वहां बुलाया, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, वही की, और लकद रहा मिन आयात रब्बिल कुबरा, और अपने रब की बुजुर्ग आयतों का मुशाहिदा किया। ये सब का सब इल्म लदुन्नी है। ठीक है, तो बात वाजे हो गई ना, कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, फिर भी स्टिल आई एम ओपन टू क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं आज के बाद इस पर टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बार बार ये महसूस होता रहा कि इसमें कुछ लूज एंड्स रह रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको हर तरफ से मौजू को घेरने की कोशिश की, ताकि कोई हत्ता लिमकान लूप होल बाकी ना रह जाए। अच्छा, अब आखिर में 5-10 मिनट में बात ख़त्म करते हुए, कि जो बात हम कर रहे थे उसकी कि इस राह तक पहुंचना, इस राह को तय करना, इस मकाम तक आना। आप लोगों ने सुना होगा और मेरा ख्याल है कि जितने भी लोगों ने जो उरफा हैं, ख़ास तौर से जो उरफा नजफ़ के उन्वान से, कि मिर्ज़ा अली काजी रिज़वानुल्लाह अलैह जो भी उनके पास शागिर्द जाता था इसी सैर व सलूक की तरबियत के वास्ते, तो उसको वो क्या देते थे सबसे पहले? हदीस उनवान बसरी, कि इस पर ये तुम्हारा दस्तूरुल अमल है। उस हदीस उनवान बसरी में, अभी मेरे पास उसका डायरेक्टली उसका मैंने तर्जुमा भी करके रखा हुआ था उर्दू में, बहुत पहले 10 साल पहले उसका तर्जुमा किया था, अगर चाहेंगे तो वो मैं कर दूंगा, उस पर पब्लिश कर दूंगा। तो उसमें ये शहीद अव्वल से शेख शमसुद्दीन मोहम्मद मक्की, शहीद अव्वल ने अपनी किताब में नकल किया है कि, और शायद उन्होंने जहाँ से नकल किया है वो शेख अहमद फराहानी, उन्होंने नकल किया है उनवान बसरी। एक शख्स था बहुत बुढ़ा और उसकी उम्र कोट की है 94 ईयर्स, और वो पहले आमदो रफ्त रखता था, आता जाता था मालिक बिन अनस जो इमाम मालिक हैं अहले सुन्नत के, उनके पास वो आता जाता था। फिर उसके बाद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मतलब जान उसने कोशिश की आपके पास आने की मदीने में, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मैं मतलूब हूँ, मतलूब का मतलब ये है कि हुकूमत के जासूस वगैरह वो सब मुझ पर नज़र रखते हैं, और दूसरा ये कि मेरे अपने मामूलात भी हैं इबादात के, औराद व वज़ाइफ़ के, तो बेहतर है कि तुम मेरे पास ना हो, और जिस तरीके से पहले तुम उनके मालिक के पास जाते रहते थे वैसे ही उनके पास जाओ और सीखते रहो। तो वो जो बूढ़ा शख्स था उनवान बसरी के नाम से, वो कहते हैं कि इमाम के उससे ये जुमले सुनकर और मेरा दिल बहुत वो हुआ, और मैं मतलब बहुत अफसरदा हो गया, और मैंने ये सोचा कि अगर मेरे अंदर कोई खूबी होती, अच्छाई होती, तो वो मुझे इस तरीके से अपनी सोहबत से मना नहीं फरमाते। तो कहने लगा कि मैं फिर घर में बंद होकर बैठ गया, फिर मैंने उनके पास मालिक के पास भी जाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि एक दिन मैं फिर बहुत बेचैन हुआ और मैंने जाके फिर मस्जिद नबवी में, यानी जो ख़ास जो जुमले हैं ना वो उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, कि मस्जिद नबवी में जाके 2 रकत नमाज पढ़ी और रसूल खुदा की बारगाह में या रसूल खुदा के तवस्सुल से ये दुआ की कि ए अल्लाह तू कल्ब जाफ़र इबन मोहम्मद को मेरी तरफ माइल और मुनअतिफ कर दे और मुझे उनके इल्म में से रिज़्क़ अता फरमा। ये बहुत बहुत अजीब जुमला है, इन्हें मुझे एग्जैक्टली नहीं मुझे याद कि इल्म में से है या इल्म का है, कि मुझे उनके इल्म का रिज़्क़ अता फरमा। यानी अब ये एक बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट है, बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है ये, कि इमाम के पास उसके आने का मकसद यह है कि इमाम का इल्म सीखना नहीं है, इमाम के इल्म का रिज्क, उसको वो रिज्क के तौर पे ले रहा है। फिर एक वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जब बेचैन हुआ, जब मेरा दिल बिल्कुल कहते हैं ना कि साथ छोड़ गया, तो फिर मैं जाके वह इमाम के दरवाजे पे बैठ गया, छठे इमाम के, और फिर खादिम निकला, उसने देखा कि क्यों बैठे हो भाई यहाँ पे, तो उसने कहा कि मैं शरीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। बहरहाल उसके बाद इमाम ने बिलाकर उसको बुलाया, पूछा क्यों आयो, किस मकसद के लिए आयो, तो उसने उसी बात को दोहराया कि मैंने खुदा से ये दुआ की है कि अल्लाह आपके इल्म का रिज्क मुझे अता करे। तो उसके जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब बात कही, आपने फरमाया कि इल्म वो चीज़ नहीं है जो आमदो रफ्त और तालीम व तअल्लुम से हासिल होता है। क्या मतलब हुआ? इल्म कहीं आने जाने से या सीखने सिखाने से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इल्म एक नूर है जिस कल्ब को खुदा उसके लायक देखता है, उस कल्ब में उस नूर को, उस चिराग को रख देता है। मिसबाहुल हुदा जो आया है नूर है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिसबाहुन अल मिसबाहु फी ज़ुजाजतिन। तो ये जो मिश्कात है वो सदर और सीना है, जुजाजा और साफ और शफाफ कंदील जो है वो कल्ब है, और उस कल्ब के अंदर वो चिराग जो रोशन होता है जिसकी मिसाल नूर खुदा की है, वो ये इल्म है जिसे खुदा रखता है। ठीक है, और ये इमाम अलैहिस्सलाम ने किसके जवाब में कहा है, जो रिज्क इमाम के या विलायत के इल्म का रिज्क हासिल करने आया है। इससे ये ना समझ लीजिएगा कि हर इल्म ऐसा ही है। ये कौन सा इल्म है, यानी कि ये इस उतुल इल्म की तारीफ है, ये उतुल इल्म वाली तारीफ है, ये उस विलायत के विलायत की राह से जो इल्म हासिल होता है, कि जो हम उसमें दुआए ज़ियारत जामिया में भी जो जुमले पढ़ते हैं कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ, मुहतमलुन लिइल्मिकुम, ताकि आपके इल्म का बोझ उठा सकूँ या आपके इल्म को हमल करने के काबिल हो सकूं, ज़ियारत जामिया में ये जुमले मौजूद। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है ये फ़र्क, इस फ़र्क को, क्योंकि मैंने इतनी सारी जो इस पर बहस मेहनत की है ना, ताकि आपका जहन उस जगह पे ना फंस जाए कि आप इस दरसी और बहसी इल्म को उतुल इल्म में समझ लें और इस बारे में कंफ्यूज हो जाएं कि ये उतुल इल्म वाला जो मकाम जिसको हम बार बार कमाल इंसानियत और मकसद खिलकत कह रहे हैं, इसका मकसद जो है आयतुल्ला बन जाना है या हुज्जतुल इस्लाम या प्रोफेसर या पीएचडी है, बल्कि हकीकतन उतुल इल्म की मंजिल तक पहुंचने के लिए इन तमाम बुतों को तोड़ना है। जैसे इमाम खुमैनी की ये गजल जो उन्होंने आयतुल्ला जवादी आमली के जो वही उनकी तो ज़्यादातर किताबें दुरूसी हैं, हमासा व इरफान, उसमें उन्होंने इमाम खुमैनी की एक गज़ल नकल की है और कहा है कि ये गज़ल जो है ये उस दौर में उन्होंने कही थी कि जब बहुत मतलब बॉम्बिंग और जंग उरूज पे थी, यानी कि उन लोगों को हैरानी होती है कि उस दौर में कि जब इतने ज़्यादा हालात सख्त थे कोई इंसान इतना इरफानी और आशिकाना कलाम कह सकता है। तो उसमें उन्होंने यही जुमला कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी मेरा नाम है ना, ये जितने भी नाम व नमूद है, ये हकीकतन नंग व आर है, खुदा सब ले जाइए मुझसे, इसमें से कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इन सब को तोड़ के पहुँचता है इंसान उतुल इल्म तक, न कि इसको ले के सर पर चढ़ा के। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जुमला ये कि इल्म नूर है जिस कल्ब को खुदा इस लायक देखता है उस कल्ब में उसको रख देता है। और फिर आपने फरमाया कि अगर तुम उसको हासिल करना चाहते हो तो अपने नफ्स में हकीकत बंदगी को तलाश करो। यह है रूट, वही जो अल्लामा तबाताबाई ने कहा था, अपने नफ्स में हकीकत बंदगी को। और फिर वो पूरा है कि उसने पूछा कि पर हकीकत बंदगी क्या है, तो आपने उसको 9 या 12 चीजें बताई थी कि हकीकत बंदगी क्या है। अगर आप देखना चाहें तो ये नेट पे भी मिल जाएगी, मैंने भी इसका उर्दू तर्जुमा किया था काफी पहले, तो मैं भी वो शेयर कर सकता हूं। तो बात वाज़ेह हो गई कि मकसद खिलकत क्या है, वॉट वी शुड एम फॉर, और उसको एम करने के लिए बीच में माइलस्टोन हैं जो हमें एक 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 करके जिन पर इन्हें क्या समझ लें कि जिन महाजों को या जिन मैदानों को सर करना पड़ेगा। ये बात सही है कि हमें इनफरादी तौर पर मारिफत की तरफ जाना होगा हमें, लेकिन कौन सी मारिफत, जो आयात और कलेमात इलाहिया के जरिए से हासिल होती हैं। وہ معرفت جو تلاوت الہی اور تزکیے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. تزکیہ مسٹ ہے, ولایت مسٹ ہے. تزکیے کو اگنور کر کے, ولایت کی خدمت کو اگنور کر کے کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک. اور اس کی علامت کیا ہے؟ جو دو علامتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر انسان کی معرفت محبت میں بدل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہونا شروع ہو گئے. اور اگر ہمارا جو علم ہے اس نے ہمیں عدالت عملی پر قائم کرنا شروع کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. کیونکہ اولو العلم قائمم بالقسط, وہ لوگ ہیں جو خدا اور ملائکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے توحید کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ ہیں وہ سارے پیرامیٹرز, یہ ہیں وہ سارے مطلب بنیادی, آپ وہ سمجھ لیں کہ ویٹس اینڈ میجرز کہ جن کے ذریعے سے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کینوس اتنا بڑا ہو گیا ہے نا اور اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اگر اس موضوع سے آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ اتنی سرسری طریقے سے حل نہیں ہوگا. اس کو باقاعدہ لے کے بیٹھنا ہوگا, اس کو لے کے چارٹس بنانے ہوں گے, اس کو لے کے تمام چیزیں دیکھنا ہوں گی, تب جا کے رفتہ 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 کر کے اس کا فہم و ادراک حاصل ہو پائے گا انشاءاللہ کہ یہ بات کیا ہوئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں اپنے لیے بھی کہ انشاءاللہ جو بات ہم نے کہی خدا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی کہ خدا, ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بہرحال مشکلات سے دوچار ہیں, لیکن ہمیں خدا اس قابل بنائے کہ یہ مشکلات ہمارا رستہ نہ روک پائیں. ٹھیک ہے, مشکلات سے بھی انسان لڑتا ہے, فائٹ کرتا ہے اپنی زندگی میں, لیکن اگر یہ مشکلات سد راہ بن جائیں نا, انہیں دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں اور ہم اس کے اس پار دیکھ ہی نہ پائیں, یعنی عبور کرنا تو الگ بات ہے, دیکھ ہی نہ پائیں, تو یہ پھر بہت بدقسمتی کی بات ہوتی. تو یہ دعا سب کے لیے ہے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد.
ایک سوال یہ تھا, ضرور, جو آپ پورا شروع سے جب شروع کیا تھا ڈسکشن, تو آپ نے وہ دکھایا تھا کہ علم عمل صفات, تو آخری میں آپ نے جو رسول اللہ کی معراج کی بات کی ہے کہ علم لدنی اللہ کی بارگاہ سے ان کو عطا ہوا ہے, مشاہدہ کیا انہوں نے بزرگ ترین آیتوں کا, تو پھر اس چیز کی جھلک رسول اللہ کے عمل میں معراج کے بعد کچھ فرق پتہ چلتا ہے کہ کس طرح
دیکھیں, ہمارا جو ہمارا لیول ہے نا وہ اتنا لو ہے, یعنی جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ ایک ٹیچر ہے جو ماسٹرز کر رہا ہے یا پی ایچ ڈی کر رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کے شاگرد جو ہیں نا وہ کلاس 1-2 کے لیول کے ہیں, انہیں فرق پتہ چلے گا کہ یہ ماسٹر سے پی ایچ ڈی ہو گیا ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا فرق پڑا نہیں پڑا کیونکہ اس پہ بھی, لیکن ہمیں کیا پتہ چلے گا
ہم,
یہ وہ بات جس کو اگر سمجھ میں آئی ہوگی تو اہل بیت کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نفوذ جو ہیں انہوں نے
جب رسول اللہ نے سارے ان صفات کو حاصل کر لیا اور وہاں پہنچے ہیں, تو اور مطلب کیا حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟
نہیں, وہ جو بھی کمالات حاصل ہوئے ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ حاصل ہوئے ہیں نا, لیکن ابھی جس چیز کو اپنے کمال تک پہنچنا ہے وہ انسانیت ہے. کہ رسول خدا کا معراج کے اس مرحلے پر پہنچنا نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان کے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کمال تک جا سکے, یہ بات ثابت ہو گئی. جی
तो इन तीनों को हम लोग कैसे कल में लाइक मतलब कर सकते हैं कि उसकी रोशनी हाजिर हो जाए? क्या सिर्फ कलबे सलीम से या फिर जैसे हम लोग फरार होते हैं उससे ये तीनों चीजें क्या रोशन हो सकती हैं?
देखें, अभी हमने जो बात की ना कि जो सूरह जुमा की आयत पढ़ी, उस सूरह जुमा की आयत में सवाल का जवाब मौजूद है कि सबसे पहला ये कि हमें आयात इलाहिया की तिलावत को सुनना होगा जो नबी ने की, और उसके बाद हमें तज़किये पर जोर देना पड़ेगा, यतलू अलैहिम आयात ही व युज़क्कीहिम, और फिर उसके बाद युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि फिर इल्म किताब और हिकमत इंसान के नसीबे जान हो सकेगा। तो जो भी हकीकी इल्म है, जो भी यानी कि जिस तरीके से कि आजकल के दौर में जो साइंटिस्ट हैं वो आयात इलाहिया को पढ़ रहे हैं, जो आयात आफाकी हैं, आयात कुतुबी नहीं, आयात आफाकी को पढ़ रहे हैं लेकिन बगैर तज़किये के पढ़ रहे हैं, तो वो सूरह जासिया की उस आयत के ज़ैल में चले जाते हैं कि अवल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व खत्म अला समही व कल्बही, के फिर वो अपने इल्म की बिना पर गुमराह हो जाते हैं और उनकी समाअत और उनके कुलूब पर मोहर लग जाती है। तो बगैर तज़किये और विलायत के इल्म की हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता। यही तो हमारा मेन एम्फेसिस था कि जब तक इंसान विलायत हक का शागिर्द नहीं बनेगा, और जब तक इंसानी ने देखें हमारा जो मेन रोल है ना इस लाइफ में वो तज़किया है, हकीकतन अपने तज़किये की एफर्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी है, बाकी इल्म खुदा का है, इल्म उसकी बारगाह से है, वो फ्लो इन होना शुरू हो जाएगा। जो इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला है ना कि खुदा जिस कल्ब को उस लायक देखता है उसमें उस नूर को रख देता है, उस चिराग को रख देता है। तो अगर इल्म हकीकी हम तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर पाए हम। वही पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल आपका ग्रेडियंट जनरेट होगा, फ्लो इन शुरू हो जाएगा। टैगिंग उसकी यह है कि इंसानों की यानी मुसलमानों के दराजात अकॉर्डिंग टू इल्म या मारिफत, लेवल ऑफ नॉट ह्यूमन बींग्स, लेवल ऑफ मुस्लिमीन। اللهم صل على محمد وآل محمد.